السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپن سب کو اس سلسلے میں لا کے اپنے اوپر ایک بہت بڑا کرم کیا. وہ اس لیے کہ جب میں آپ کو قصہ سناؤں گا کہ میں کیسے جماعت میں آیا, اس سے پہلے کہ میں یہ قصہ سناؤں میں یہ کہہ لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے جیسا نصیب دار کوئی نہیں ہے میرے سامنے, کیونکہ میں دنیا میں کھویا ہوا تھا. میرے کو دنیا جو ہے, یہ دنیا جب حضرت جی مجھے ملے کینیڈا میں, کوئی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, تب میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں کینیڈا میں ہوں کفرستان میں, اور یہاں پہ یہ بزنس اور یہ گھر اور یہ گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ مارگیجز اور یہ انٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں ہر کوئی کے ساتھ. ہر کوئی کے ساتھ جو ہے وہ میدہ جو نفس ہے وہ بولتا ہے لاؤ 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 لاؤ, جتنا ملتا ہے وہ اور چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا وہ میرے کو اور حوش ہوئی کہ اور چاہیے اور چاہیے. لیکن اللہ کے شکر سے جب سے حضرت جی سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں کینیڈا میں ایسے ہوں جیسے وہ مرچ, جیسے وہ کالی مرچ جس کو پیسا جاتا ہے گرائنڈر میں تو کیسی باریک ہو جاتی ہے, اس میں کچھ وہ کالی مری جو ہوتی ہے چھوٹی سی وہ تو نظر آتی ہے, لیکن جب پیس ڈالو اس کو تو وہ بالکل وائٹ کالی مکس کلر کی ہو جاتی ہے میری داڑھی کی طرح. اس کا سمجھ میں نہیں آتا اس کو خود کو کہ اس کا اصلی روپ کہاں گیا. تو ہم لوگ جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور یہاں کی بھی حالت دیکھ کے ایسا لگا کہ سب لوگ اپن ایک گرائنڈر میں ہیں اور پیس رہے ہیں. کوئی مارگیج کے چکر میں لگا ہوا ہے, کوئی ڈونیشن کے چکر میں لگا ہوا ہے, دنیا 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 اپنے دلوں میں آ گئی. ماشاء اللہ سے حضرت جی سے جب سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ حالات کہ میری زندگی کیا تھی, میں کیا تھا اور میں کیا ہو گیا حضرت جی کے ملنے کے بعد. میں کام بزنس اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہر کوئی چیز دی ہوئی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہاتھ لگاؤں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پرووائڈ نہیں کی. وہ مٹیریلسٹک تھنگ کی میں بات کر رہا ہوں, فائنینشیل تھنگ کی میں بات کر رہا ہوں. قدرت اور اللہ اور یہ چیز یہ سمجھتا تھا میں کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی اور شہادہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اپنا مسلمان بننے کا حق ادا کر دیا ہم نے, اب اپن سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ میرا ویو تھا حضرت جی سے ملنے سے پہلے. بٹ اینی ہاؤ, اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل میرے لیے اویلیبل کیے ہوئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو اللہ کی مہربانی سے ہر سال پچھلے کوئی 15 سال سے حج پہ جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے. کسی نے لاسٹ ایئر میں نہیں جا سکا تھا, کچھ بیٹی کے یہاں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواسا دیا اس حج دوران, تو ہم نہیں جا سکے. سو اینی ہاؤ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن آج سے 10 سال پہلے میں حج پہ پہنچا ہوا تھا, تو ہمارے ساتھ ہمارے مولانا یوسف پٹیل جو کہ اپنے بہت اچھے ساتھی ہیں کینیڈا سے, آپ ملے ہوں گے کچھ لوگ جو حج پہ اور عمرہ پہ ان سے ملے ہوں گے پاکستان میں بھی, وہ سورت کے ہیں اپنے انڈیا کے, اور وہ آئے ہوئے تھے حج پہ. وہ ہمارے گائیڈ ہوتے ہیں اس گروپ میں جس میں میں بھی جاتا ہوں. تو ہم لوگ جو ہے وہ حج کا تو معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمرے میں 4-4 5-5 رہتے ہیں, 16-16 بھی رہتے ہیں, 10-10 بھی رہتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ کیسی حج کی پیکج آپ لے کے گئے ہیں. تو ہم لوگ اس وقت ایک روم تھا بہت بڑا سا, اس میں 10 جانے رہتے تھے اور اس 10 جانوں میں مولانا صاحب بھی شامل تھے. تو اکثر جو ہے ہمارا खाने पीने का मेरा जो मामला था वो ऐसा था कि मेरे को बीवी के बगैर खाना नीचे नहीं उतरता। तो मैं बोलता था उन लोगों को, आप लोग इधर बैठो और मैं जो है वो सीढ़ी पे जाके अपनी बीवी के साथ खाना खाऊंगा, क्योंकि मस्तूरात अलग रहती थी, मर्द अलग रहते थे। मैं अपना खाना दोनों का ले जाके हम लोग सीढ़ी पे बैठ के खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो जितने भी लोग जो घर की तरह थे हमारे, जिनके पर्दा नहीं था, वालिद साहब की तरह हमारी वाइफ जो है मौलाना साहब को गिनती हैं, तो वो भी सीढ़ी पे आ गए खाने के लिए। तो एक दिन बैठे हुए थे कि मौलाना साहब के साथ बातचीत चली, और कुतुब और अब्दाल और कयूम और सिद्दीक और हर चीज़ वो बताने लगे। वो आलिम दीन थे, हम जो है वो दुनिया में पड़े हुए थे, उन्होंने इल्म जैसे आप लोगों सब ने हासिल किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह में आप सबको इसका अजर अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ तो उसका अजर अजीम होगा इंशाल्लाह। जैसे कि हजरत जी फरमाते हैं। खैर, मौलाना साहब बैठे हुए थे, मैं इनकी पैर दबा रहा था। मैंने बोला, मौलाना साहब हर काम में, हर फील्ड में, हर चीज़ में शॉर्टकट होता है, आप समझ रहे हैं ना, शॉर्टकट की मायने जल्दी से पहुंच जाएं। तो रास्ता अगर घर का आपका एक जगह से जाता है और दूसरी जगह से थोड़ा कम पड़ चलने का है तो आप उधर से जाओगे। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने शॉर्टकट दिए हुए हैं। तो आप तो आलिम दीन हो, आप जो हो अल्लाह से करीब हो मेरे से, आपको शॉर्टकट कोई मालूम हो अल्लाह के पास पहुंचने का तो मुझे बता देना। ये मक्का शरीफ में बात हो रही है, होटल की सीढ़ियों पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं और ये बातें हो रही हैं दीन की। खैर, वो हज कंप्लीट हुआ, 10 साल पुरानी बात है ये माशाल्लाह से। एक दिन जो है वो टोरंटो पहुंचे हुए थे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मौलाना साहब का फ़ोन आया। अशरफ, मालूम है आप कह रहे थे मक्का शरीफ में, वहाँ पे अपन सीढ़ी पे बैठे हुए थे, कि अल्लाह के पास पहुँचने का शॉर्टकट होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने पूछा था आपसे अगर कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। तो बोले कि हाँ, तुम्हारा शॉर्टकट आ गया है। मैंने बोला ये शॉर्टकट कैसे आ गया, शॉर्टकट तो आप बताने वाले हो, कौन आ गया? बोला हमारे शेख साहब आए हुए। मतलब ये क्या होता, मैं आलिम दीन नहीं था, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरी बीवी ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया है। ये जो हजरत जी कहते हैं कि सीना पसीना ये चीज चलती है, ये जीती मिसाल है इधर बैठी हुई। मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इनकी सोहबत में रहते रहते अल्लाह ताला ने वो आंखें खोलनी शुरू की जो बंद थी। जो हजरत जी आपको और मुझे सिखाते हैं कि दिल की आंखें खोलो, दीन की दिल की आंखें खोलो, दिल में जो धब्बे लगे हुए हैं वो मिटाओ। तो अल्लाह ताला ने ये हमें सरफ हासिल किया मौलाना की बातों से कि भाई चलो। खैर, मैं ले जाऊं वापस, वहाँ पे ही मौलाना का फ़ोन आया। मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, काम धंधे की बात हो रही है, और मौलाना बोल रहे हैं आ जाओ आज शाम को, कुछ दिन रह गए हैं। जैसे आपको हजरात को बोलते होंगे कि हजरत जी आए हुए हैं, आ जाएं, थोड़ा मुलाकात कर लें, थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा जिक्र कर लें, वो भी इसी तरीके की दावत मुझे दे रहे थे। उन्होंने बोला पाकिस्तान से कोई आए हुए हैं। मैं बोला पाकिस्तान से कौन आए हुए हैं? बोला वो पीर साहब आए हुए हैं। बोला वो क्या होता है? बोले कि देखो ये जिक्र करते हैं और ये ऐसा होता है। मैं बोला पाकिस्तानी पीर, मेरे को दूर रख, मैं अपने अल्लाह अल्लाह में और मैं अपने नमाजों में, ज़कातों में और हज में और इसी में खुश हूँ। तो मौलाना साहब जो है वो समझ गए कि ये शैतान जो है इसके सर पे आया हुआ है, ये नहीं मानेगा। तो कहाँ पहुँचते हैं अगर कोई काम पर रौनक करवाना हो कोई से, तो कहाँ पहुँचते हैं, कैसे काम निकलवाते हैं, फोर्स लगाते हैं ना कोई कि देखो गवर्नमेंट के इदारे में काम करना है तो ये कर लो, उसके इदारे में काम करना है तो उससे बात करो, उससे इससे बात करो तो वो करवा देंगे। तो मौलाना साहब ने हमारी हाई कमांड से सोर्स लगा दी,
बिल्कुल सही जगह लगा।
हमारी बीवी को फोन किया कि मालूम है वहाँ बैठे हुए ये बड़े बोल रहे थे तुम्हारे कि कोई आए तो शॉर्टकट बता देना, अब शॉर्टकट आया हुआ ये आने को मना कर रहा। अल्लाह, अब जब हाई कमांड को मालूम पड़े तो सिपाही तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, सलाम सलाम करते हुए हमने बोला अच्छा चलो तुम कह रही हो तो हम चले चलेंगे, देख लेंगे, ये भी देख लेते हैं सूफी कौन है। बहुत देखे पाकिस्तान में, हमें यकीन नहीं आता, लेकिन तुम कह रही हो तो हम चले चलेंगे। खैर, मौलाना की दावत, बीवी का इसरार और दिल की हालत ये थी कि मालूम नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं फंसने के लिए, अल्लाह बचा तू मुझे। खैर, पहुँचा एक जगह, एक घर में, जैसे माशाल्लाह से इन्होंने अपना घर खोला हुआ है, ऐसे एक शख्स थे वहाँ पर भी, उन्होंने अपना घर खोला हुआ था, उसमें जो है वो जिक्र फिक्र की इंतज़ाम थी और हजरत जी उनके साथ ही रहते थे। जैसे यहाँ पे मीनार साहब ने इनका घर, इनका दिल, इनके बीवी, इनके बच्चे, इनकी सारी चीज़ अपनी चीज़ बना दी इन्होंने माशाल्लाह से, अल्लाह ने इनको अजर अजीम दे। अच्छा, तो जो है वो मैं पहुँचा वहाँ पे असर मगरिब के दरमियान, जो है वो कहा था पहुँचने का, माशाल्लाह से पहुँच गया मैं मगरिब से पहले, नमाज से पहले वहाँ बैठे। हजरत जी ने जैसे शफकत से आप लोगों से मिलते हैं उस वक्त 10 साल पहले, मुझे से भी उसी शफकत से मिले, मुसाफा किया, मिले माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई, नाम वगैरह पूछा। एक बार मैंने नाम बताया था कि मेरा नाम अशरफ है, उसके बाद मेरे से कभी इन्होंने नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। उस दिन से आज दिन तक इनको मेरा नाम याद है। कभी जो है वो जोर जहन पे, जैसे अपन तो भूल जाते हैं ना, मेरे को आपने अपना नाम बताया 10 बार, अभी पूछे तो मुझे नहीं मालूम, साथ ही बोल दूंगा, साथ ही आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन इनको नाम से याद होता है हर कोई शख्स। यही नहीं, अल्लाह ने इनको हफ्ज ऐसा फरमाया, ऐसा दिया है कि मेरी बेटी के बेटे का नाम क्या है उनको मालूम है। इस शफकत से पेश आते हैं। सो एनी हाउ, मौलाना साहब की दावत से पहले दिन जब पहुंचे हम जिक्रुल्लाह करने के लिए, मालूम नहीं था कि जिक्र क्या होता है, मालूम नहीं था कि कैसे होता है। और ये शूशा जो कहते हैं ना हजरत जी, शूशा, ये शूशा मालूम ही नहीं था कि हमको ये होता क्या है, हमें तो मालूम नहीं था कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया, हम बीवी के इसरार पे पहुंच गए। खैर, मुलाकात हुई, बहुत अच्छी तरीके से पेश आए, घर में गए, जिक्र के लिए महफिल लगी, बेसमेंट इतना सी जगह होगी जितने में आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई 20-25 आदमी आ जाए, इतने आदमी थे हम लोग और बैठे जिक्र के लिए। हजरत जी ने जिक्र शुरू कराया और यही मालूम नहीं कोई आए, उन्होंने हमको तरतीब दी कि ऐसे होगा जिक्र, लाइटें बंद हो जाएंगी और हम लोग सांस से, जैसे आप लोगों को बताया गया कि सांस से करना, कोई सांस से कर रहा है क्योंकि पहली बार है, कोई पहली बार करे कोई भी चीज़ तो गलती तो होगी, आदमी को सीखना पड़ेगा ना, जब्स करना पड़ेगा कि लाएँ हमें सिखाएं, जब शौक होगा सीखेंगे तो होगा। अब कोई बोले कि जिक्र करना अल्लाह हू पहली बार और सांस से करना और यूँ करना, तो आप बोलोगे ये तो पागल हो गया, इसको क्या हो गया कि ये सांस से करा रहा है, अल्लाह हू करूँगा और इसकी कसरत से करूँगा, कैसे होगा, सवाल आते हैं ना, इसलिए मैं ये बात खुलासा करता जा रहा हूँ। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ जिस दौर से आप लोग गुजर रहे, इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, ये सवाल आए और ये सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो जिक्र शुरू हुआ, उन्होंने बताया ऐसे होगा, मैं भी बैठ गया, अंधेरा हो गया। खैर, उन्होंने ये नहीं बताया कि अंधेरा होगा, अंधेरा हो गया और डरने लगा, शैतान और आके बैठा ऊपर कि ये कहाँ फंस गया, ये मौलाना और ये तेरी बीवी ने कहाँ फंसा दिया तुझे। और खैर, अल्लाह अल्लाह करके और जिक्र किया और बत्ती जली तो होश आया कि वापस जो है इतने से कमरे में 20 आदमी शूशा और जिक्र हो रहा है, बैठ गए, फिर चुपचाप बैठ गए, नमाज ईशा पढ़ी। ईशा पढ़ने के बाद हमें हजरत जी ने कहा आप ज़रा हमारे साथ खाना खा के जाइएगा, मना तो नहीं कर सकते आप, छोटा सा घर था, बैठे खाना खाया, बड़ी शफकत से पेश आए। उसमें वो पहली रात में जो इनकी नज़र और मेरी नज़र एक बार मिली है, वो नज़र मेरे को आज दिन तक याद है, वो नज़र ने काम जो किया वो आज दिन तक चल रहा है। اور انشاءاللہ تا قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ رکھے ایسے برقرار, ایسے لوگوں سے اپن کو ملائے اور ایسے لوگوں سے اپنے سے قریب رکھے, اپنی اولاد کو ان سے قریب رکھے. خیر وہ ان سے نظر تو ملی, سب کچھ ملا, لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے میرے اوپر کہ یہ تو پھنسی ہے. خیر کھانا کھایا, ملے, مسافر کیا, نکلے, یہ آنکھ سے آنکھ ملی, میں گیا باہر, بیوی کو بلوایا, گاڑی میں بیٹھے اور شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا. میں نے ماں بہن کی گالیاں بکی میری بیوی کو, میرا تو تیرا مولانا سب پاگل ہو گئے ہو, یہ صوفی ازم ہے, یہ پاکستانی ازم ہے, یہ پاکستانی جتنے بھی پیر مرید ہیں وہ تیرے جیب کاٹ کے لے جائیں گے, پھر وہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, یہ سب بیکار ہے, چھوڑ, اس باتوں میں اپن کو نہیں آنا. یہ باتیں میں کر رہا ہوں گاڑی میں وائف سے ملنے, حضرت جی سے ملنے کے بعد جاتے ہوئے گھر, اور بول رہا ہوں ان کو کہ چل بھائی اب اپن کو یہاں نہیں آنا, ایک بار آ گئے بس ختم کر اور فنش. اینی ہاؤ گئے گھر پہ جا کے سوئے, سونے کے بعد جو ہے واپس کام, وہاں پہ تو کام تو ایسا ہے نا کہ اپن لوگ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کینیڈا امریکہ میں درختوں میں جیسے یہاں پہ مینگو لگے ہوئے نا ان کے گھر پہ, ایسے وہاں پہ ڈالر لگے ہوئے, توڑ لو. وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, صبح اٹھو 5 بجے نماز پڑھی اور جاؤ فوراً کام پہ. یہاں پہ آپ لوگ مسجد جاتے ہو, ہم کو جانا پڑتا ہے سلیوری کرنے کے لیے فوراً. تو یعنی آفس پہنچے تو دوپہر کا وقت ہوا, کھانے کا, وائف آئیں کہنے لگیں, اور وہاں پہ یہ بھی بتا دوں بیویاں ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں ورنہ تو پورا نہیں ہو. آپ بولے وائف کہاں سے آئیں, ہاں وہ بھی ساتھ کام کرتی ہیں آفس میں. خیر وہ آئیں بولنے لگی کیا ارادہ ہے, میں نے بولا ارادہ تو وہی ہے جو میں نے گاڑی میں تم کو بتایا, میرے کو نہیں جانا. تو کہنے لگی نہیں دیکھو نا ابھی 2-3 دن کے لیے تو رہ گئے ان کے, اور تم کو کیا دینا ہے لینا ہے ان سے, تم کو تو اللہ اللہ کرنا ہے, آ کے اللہ اللہ کر لو اور تم کچھ لینا دینا نہیں ان سے, تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہنا کہ وہ اللہ اللہ ہی کرا رہے ہیں جا کے کر لو. میں بولا نہیں نہیں تم جاؤ, تمہارے بولا میں تو جا نہیں سکتی, میرے کو تو جانا ہے لیکن میرے کو تو محرم چاہیے. میں بولا او یہ تو پرابلم ہو گیا, یہ محرم کا چکر آ گیا, تو چلو ایسا کرتے ہیں تم کو جانا ہے, واپس اصرار کر رہی ہیں, ہائی کمان ہے نا, تو ہم چل دیے, چلو بھائی گئے ایز اے محرم. لیکن وہی واپس شوسا شروع ہوئی, ذکر شروع ہوا, اندھیرا ہوا, وہی ساری چیز ہوئی. ہم واپس گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کبھی دیکھا نہیں, کبھی کوئی سے سنا نہیں. جیسے حضرت جی کہتے ہیں نا کہ سب بولتے ہیں کہیں سنا ہی نہیں کہ ذکر کا ہے, اب جب قرآن آیت بتا رہے ہیں تو معلوم پڑ رہا ہے یا اللہ یہ تو آپ قرآن میں بول رہے ہیں کہ اکبر ہے, جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو سکھا دیا کہ دیکھ یہ یہ آیتیں ہیں, یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اس وجہ سے میں تم کو کراتا ہوں. جب بیٹھے تو معلوم پڑا نا, لیکن اگر وہ شیطان اتر جاتا ہمیں تو آج معلوم نہیں پڑتا, اس سے محروم رہتے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ یہ کام کی باتیں ہیں, کیونکہ انسان کے پیچھے شیطان پیدا ہوا ہوا ہے. جب اپن پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو ایک شیطان آ گیا اپنے ساتھ, وہ لگا رہے گا ہمیشہ. دعا یہ کرنے کی اللہ پاک اس شیطان کو تم مسلمان بنا دے, اگر اس سے دعا کرائیں تو دعا کریں ایسی کہ یا اللہ پاک اس شیطان کو, شیطان مسلمان بھی ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں آپ. شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھا, ان میں سے یا اللہ پاک ان میں سے شیطان کو جو میرے ذمہ پڑھا اس کو مسلمان بنا دے. اگر وہ مسلمان بن گیا تو آپ ذکر کر لو, نمازیں پڑھ لو, حج پڑھ لو, روزے رکھ لو, وہ آئے گئی نہیں. تو خیر یہ چیز جو ہے وہ میں دوسرے دن گیا, یہی چیز ہوئی, اور پھر جو ہے وہ بیٹھا ہوا میں نے باتیں سنی حضرت جی کی, وہی بات آج دن تک سنتا آ رہا ہوں, لیکن وہی بات میں ڈفرینٹ مزہ ہوتا ہے سننے کا. وہی چیز, وہی قرآن آیت, وہی چیز, وہی ساری چیز ہے, لیکن اس کا مفہوم اور اس کا انوائرمنٹ اور اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے انسانی باڈی پر. حالانکہ چیز تو وہی ہے, قرآن کی لکھی ہوئی تو بدل کے نہیں بتا رہے ہو, पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूँ यही आयतें, वो आयतें तो बदली नहीं, लेकिन ये समा बदल गया, ये लोग बदल गए, ये हालात बदल गए, उससे उस बात की लज्जत डिफरेंट हो जाती है और उसका मज़ा। जैसे ऐसा मैं बताऊँ आपको एग्जांपल के पाकिस्तान का सेब खा लो आप और अमेरिका के सेब खा लो आप, पाकिस्तान के सेब में जो लज्जत है वो अमेरिका के सेब में नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके की लज्जत जहाँ भी जाएंगे आप जिक्र में वो लज्जत आती जाएगी उस एनवायरनमेंट के साथ। तो खैर मैं गया, जिक्र किया, वही बात हुई, हजरत जी के साथ खाना खाया, मुसाफर किया, बाहर निकला, वापस गाड़ी में बैठा, वही मंतक किया वापस मैंने बीवी के साथ, गालियां बकी और बोला अब तू जा, तेरा मौलाना जाए, नेक्स्ट डे मैं नहीं आता। वापस गया वहाँ पे, तीसरा दिन हुआ, जोहर की नमाज का टाइम हुआ, खाना खाने के बाद जोहर की नमाज पढ़ी मेरे ऑफिस में ही, फैक्ट्री में ही, और वाइफ को मैंने कहा कि अच्छा ऐसा कर, आज तेरा महरम खुद तेरे को ले जाएगा, आज मैं तुमको ले जाऊंगा। बोले क्या हो गया? मैं बोला आप 2-3 दिन तो रह गए, चलो सही है, तू भी खुश, तेरा मौलाना भी खुश और तेरा शेख भी खुश, मैं महरम बन के नहीं आ रहा, आज मैं जिक्र के लिए आ रहा। तीसरा दिन मैंने जिक्र के लिए आया। अच्छा, जिक्र के लिए मैं बैठा, अब मैं ऐसा फंस गया शेख के जाल में, मौलाना के जाल में और बीवी के जाल में। अब ना यहाँ से निकल सकता हूँ, ना यहाँ से निकल सकता हूँ, ना यहाँ से निकल सकता हूँ, कहीं से मैं सोच रहा था कि कैसे निकलूँ, मैं निकल नहीं सकता था, अब फंस गया था। वो एक अगर स्ट्रैप हो कोई चीज़ की पकड़ने का और उसमें चले जाए चिड़िया, उसमें चली जाए बिल्ली, तो आप पकड़ लेंगे आसानी से। अब मैं पकड़ा गया था चारों तरफ से, तो मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। जब लाइटें बंद हुई, जिक्र शुरू हुआ, मैंने बोला या अल्लाह यहाँ पे तू ही लाया है मुझे और तू ही मेरे को इसमें से निकाल, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ना ये जिक्र मेरी समझ में आ रहा है, ना ये शख्स यहाँ पे बैठा हुआ जो जिक्र करा रहा है वो मेरी समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये शख्स जो मुझे जिक्र करा रहा है अगर वो सच्चा तेरा अल्लाह का बंदा है, ये वली अल्लाह है, तो तू आज मुझे दिखा दे। ये करके मैंने जिक्र की पहली लतीफे शुरू की है हजरत जी के साथ, लताइफ शुरू हुए। अब हमें नहीं मालूम था कि लताइफ होते क्या है, ये मालूम है कि लतीफा, अपन तो लतीफा बोलते हैं ना, कोई जोक कर रहा है तो लतीफा कर रहा है। उर्दू जबान में लतीफा किसको बोलते हैं? कोई जोक सुना रहा हो तो उसको लतीफा बोलता हूँ ना, ये लतीफा हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं था। खैर, पहला लतीफा हुआ, कैफियत कुछ ऐसी हो गई कि मुझे नहीं मालूम, मैं इस जबानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये तो रूहानी एक्सपीरियंस है, ये रूह से बातें होती हैं। खैर, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा लतीफा हुआ, चौथा लतीफा हुआ, पांचवें लतीफे पे जब पहुंचे तो मेरी हालत पसीने से, जैसे कि कपड़े मेरे जो है वो धो के ऐसे ही पहन के आ गया हूँ, ड्राई नहीं किए हुए, ऐसे पसीने बह रहे थे मुझे उस जगह पर, पूरे बदन से पसीने, मेरे को इतने पसीने कभी नहीं निकले थे पहले। मैं जब पांचवें लतीफे में आया, मैं देखता हूँ अपनी आँखों से, सोया हुआ नहीं हूँ, मुझे इन्वायरमेंट का पूरा मालूम, अगर आदमी सो जाए तो उसको इन्वायरमेंट का मालूम नहीं होता कि बराबर में कौन है या क्या हो रहा है, आपको मालूम नहीं होगा, सो जाए तो आप आधे डेड हैं, आप डेड हो गए। मैं डेड नहीं था, मैं सोया हुआ नहीं था, मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो हुआ ये कि मैं देखता हूँ माशाल्लाह मेरे आँखों के सामने रोज अथर का गुम्मत, हरियाली हरियाली, और वो गुम्मत मेरे, मैं आसमान से आया और गुम्मत के ऊपर उतरा और स्लाइड होके और मैं नीचे की तरफ आया और रोज अथर की जाली के पास आ रहा हूँ मैं, ऊपर से जैसे जाली है बनी हुई वो ऊपर आके और जैसे ही मेरी टांगे जमीन पे लगी मस्जिद में रोजे असर की जाली के पास, जिक्र हो रहा है, हजरत जी को मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ से, इतनी दूर बैठे हुए होंगे, कह रहे हैं अशरफ जी आप गौर करें, इस अंधेरे में इनको कैसे मालूम पड़ा कि मेरी हालत क्या है। इन्होंने उस वक्त जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ उसी वक्त मेरे को फौरन बोला, इसने कभी ख्वाब में मस्जिद नहीं देखी कि तू उसको रोज़े अथर बता रहा है, गुम्मत खिजरा दिखा रहा है, जाली से ला के खड़ा कर दिया है, क्या करूँ मैं, हालत पसीनों से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, आंसू निकल रहे हैं। और हजरत जी की ये बात के गौर करें और मेरी आंख खुल गई, यानी मैं अपने तसव्वुफ से बाहर आ गया और मैं देखता हूँ तो वही अंधेरा और वही तेज़ी से जिक्र हो रहा है और मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। अब सातों लताइफ ख़त्म हुए, मुराकबात हुए, मुराकबात के बाद फातिहा हुआ और लाइटें जली। अब मैं चुपचाप, क्योंकि जब बिल्ली जब शेर बनने का शौक कर सकती है, लेकिन जब शेर वाली बात आए तो वो बिल्ली बन जाती है, क्योंकि फिर वो काम नहीं कर सकती जो शेर कर सके। जो मैं पहले शेर बना हुआ था बिल्ली की शक्ल में, कि ये तो पीर ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, अब मैं भीगी बिल्ली बन गया, चुपचाप बैठा हुआ हूँ अकेला, कि क्या बोलूँ या अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या माजरा हो रहा है, कहाँ पे मैं आ गया हूँ और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैंने तेरे से मांगा था या अल्लाह, तूने मुझे दिखा दिया है, तेरा लाख शुक्र है, मेरे को कोई को बोलना नहीं है, मैं वहीं पे ही चुपचाप बैठा रहा। इतनी दूर होंगे हजरत जी और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये पहली साफ में जिक्र हो रहा है, वो वहाँ बैठे हैं। इन्होंने यूं करके और मेरी तरफ नज़र डाली, कुछ बोला नहीं, खाली नज़र डाली है। और वो नज़र अभी भी मैं देख सकता हूँ, वो नज़र अभी तक मेरे दिल की आंखों में समाई हुई है। वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, लेकिन मैं लपक के वहाँ से खड़ा हुआ और उनके कदमों में जाके गिर गया। बोले क्या हुआ बेटा, मैंने बोला मैंने आपके साथ गुस्ताखी की है, मुझे माफ़ कर दो, पिछले 3 दिन से मैं गुस्ताखी करता जा रहा हूँ, लेकिन आज अल्लाह से जो मैंने मांगा था अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। उस दिन का दिन और आज का दिन मैं हजरत जी की जो भी बात होगी उसके ऊपर पूरी कोशिश करके अमल करने की कोशिश करता हूँ, और ना करने वाली बात हो उससे भी अमल करता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करते हैं और वो बात हो जाती है। यानी कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको स्विमिंग आती हो तो आपको कोई बोले कि इनके घर पे तालाब है ज़रा स्विमिंग कर लो, लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती नहीं हो तो आप जाओगे उस तालाब में, नहीं जाओगे ना, ये ऐसी बात है। लेकिन हजरत जी अगर मेरे को स्विमिंग नहीं आती और बोले कि ये तालाब में चले जाओ, जाओ स्विमिंग करके आओ, मैं तालाब में जाकर पहले फिर डूब जाऊँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा मेरे को करना है, इनको मालूम है कि इसको स्विमिंग नहीं आती, तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ होने का है, उसमें कुछ राज है, तो वो करूँगा तब मालूम पड़ेगा उस चीज़ का। अगर नहीं करूँगा और वो शैतान आ गया वापस कि नहीं ये तो तेरे को मरवाने की सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो राज जो था वो राज ही रह गया, उस बात का राज आपके सामने नहीं आएगा। खैर तो जो है वो मैंने उस दिन रात को उनसे तौबा मांगी, उनसे माफ़ियाँ मांगी उस दिन की रात, और आज दिन तक और ता कयामत तक जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह इस दुनिया में, जब तक मैं हूँ मैं इनके पैरों तले चलता रहूँगा, इनकी खाद उठाता रहूँगा, इनकी जूतियों से फैज हासिल करता रहूँगा, अगर वो भी मिल जाए ना तो उसको भी ना छोड़। खैर ये चीज़ तो हुई मेरे हल्के में आने की, और मैंने आपको बताया कि ये अगर नहीं होता अल्लाह ताला मेरे साथ, ये करने की थी करामत, अल्लाह ताला को दिखाने का था, अल्लाह दिखाया, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई शख्स को अल्लाह ताला दिखा दें, लेकिन लगे रहे, एक न एक दिन ऐसा आ जाएगा کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز ملے گی. اس سلسلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ میں پچھلے پندرہ سترہ سال سے جو ہے حج کرتا ہوں اور ہر سال عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں. سال میں 2-3 بار وہاں پہ جانے کا ہوتا ہی اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. 3-4 سال پہلے میں جو ہے وہ حضرت جی عمرہ پہ آئے ہوئے تھے تو میں بھی ہر سال پہنچ جاتا ہوں حضرت جی کے ساتھ. وہ ماحول, وہ سبقت, وہ چیز جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. حضرت جی کے ساتھ عمرہ یا حج کرنا یا اپنے آپ کرنا, یہ دو تین یو کین ناٹ کمپیئر اٹ, یو کین ناٹ کمپیئر اٹ. خیر, تو حضرت جی پہنچ گئے تھے پہلے مکہ شریف. میں پہنچا کوئی 10 دن بعد, 6 دن بعد, 2-4 دن رہ گئے تھے. میں آیا, دوپہر کا وقت تھا, لوگوں کو بتایا ہوا تھا حضرت جی نے, حضرت معمول کے حضرت جی کو بولنا کہ عمرہ کر لیں, پھر رات کے معمول پہ ملیں گے, اس سے پہلے نہیں ملیں گے. صحیح, تو میں گیا, عمرہ کیا, ہم لوگوں نے عمرہ کر کے آئے, رات کا معمول ہوا. رات کے معمول ہونے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ میں نہیں پہنچا ابھی تک, اور اندھیرا ہو گیا تھا, اندھیرا ہو گیا تھا. اور میں وہ ہوٹل کے دروازہ کھول کے اور جیسے ہی اندھیرا ذکر کے لیے گیا, کوئی کو نہیں معلوم کہ اشرف آئے ہیں. وہاں پہ جتنی محفل بیٹھی ہوئی ہے, حضرت جی بولتے ہیں اشرف جی آگے آ جاؤ. اب وہ دروازہ وہاں پہ ہے, اندھیرا ہے, کیسے بول رہے آگے آ جاؤ. معلوم نہیں کیسے معلوم پڑا ان کو, میں حیرت. آگے آ گیا سب کے اوپر پھلانگتے ہوئے اندھیرے میں اور آگے بیٹھ گیا. ذکر کیا, ذکر کرنے کے بعد کھانا چھت پہ ہوتا تھا, چھت پہ جا گیا کھانے کے لیے بیٹھا. ہمیشہ ساتھ بٹھاتے ہیں, بٹھا کے کھانا کھلایا. پھر میں کھڑا ہو کے جانے لگا کہ حضرت جی نے بولا کہ آپ آرام کر لیں, تھکے آ رہے ہیں. میں جانے لگا, ابھی دروازے تک پہنچا, بولا اشرف جی ادھر آئیں. اچھا, واپس آیا میں, بولے آپ اتنے سالوں سے آتے ہیں یہاں پہ, حضرت اسود کو بوسہ دیا ہے؟ حضرت جی حضرت اسود کو آج کوئی 8-10 سال ہو گئے, میں کوئی کو دھکا مار کے حضرت اسود سے بوسہ دینے نہیں جاتا, میں دور سے ہی کر لیتا ہوں, بھیڑ میں نہیں جاتا. بولے اچھا, 6 سال ہو گئے نہیں دیا؟ نہیں دیا. بولے ایسا کرو آپ, کل صبح ابھی جا کے آرام کر لو, کل صبح تہجد کی نماز کے آپ فلاں جگہ پہ اپن بیٹھتے ہیں, ایک جگہ ہوتی ہے مقرر, وہاں آ جائیں. وہاں آ کے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے, ہم لوگ حضرت اسود کو بوسہ کریں گے. یہ فجر کا وقت ہے, تہجد کے بعد کا وقت, تہجد اور فجر کے بیچ میں, جس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نہیں جا سکتا, کہ آپ وہاں پہ جا کے وہ کریں گے. خیر, گئے وہاں پہ, تہجد پڑی حضرت جی. اب ہاں, اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے آ کے وائف کو روم میں بتایا کہ یہ حضرت جی کہہ رہے تھے, اب نیند نہیں آئے کہ صبح اٹھنے, آنکھ نہیں لگ جائے, صبح اٹھ جانا ہے. تو تہجد پہ جا کے حضرت جی کے ساتھ تہجد پڑھیں گے, اور پھر انہوں نے بولا ہے کہ جائیں گے. خیر, پہنچے وہاں پہ, حضرت جی آئے, حضرت معمول اپنے ٹائم پر جا کے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, پڑھی 8 رکعتیں, 1000 فجر ہونے والی تھی. بولے چلیں, تو سب حضرت جی کھڑے ہوتے ہیں تو سارے ساتھی کھڑے ہو کے ایک ساتھ پھر حضرت جی کے ساتھ جاتے ہیں. سب لوگوں کو حضرت جی نے منع کیا کہ آپ سب ادھر ٹھہریں, جہاں پہ اپن بیٹھتے ہیں, رکے ہیں امانی پہ, وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں, آپ میرا انتظار کریں, میں اشرف جی اور ایک اور ساتھ تھے امریکہ کے ساحر بھائی, ان کو بلا تھا, تو وہ ہم دونوں لے کے اور چلیں. ہم لوگ گئے وہاں پہ مطاف کے ایریا میں, ماشاء اللہ کعبہ کے قریب, تھوڑا بہت رش, قوم وہاں پہ پہنچی گئی سب لوگ, اور کیسے جگہ ملے گی, اس میں کیسے بوسا دیں گے حضرت اسود کو, کیا ہوگا یا اللہ. میں تو پریشان کہ یہ فجر کا ٹائم ہے, وہاں تک تو کوئی جانے بھی نہیں دے گا. خیر, پہنچ لے کے گئے حضرت جی کے پیچھے پیچھے ہم دونوں, حضرت جی آگے آگے اور چلتے گئے, ایک سیدھے ہاتھ پہ ایک الٹے ہاتھ پہ آگے پہنچے. وہاں پہ گئے تو کوئی جہاں پہ حتیم ہے, حتیم کے پاس حضرت جی آگے کھڑے ہوئے اور مقامی ابراہیم کی طرف, آسمان کی طرف دیکھا. میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں, میں وہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں, میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں, لال آنکھیں, پنک سا چہرہ حضرت جی کا, یو نو دھوپ نہیں آئی ابھی, اور اتنا جیسے شدید کوئی بات چیت میں کوئی چیز میں لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب اپنا چہرہ یوں کر کے نیچے کیا تو مقام ابراہیم کے پاس ایک سوتا बहुत सारे बैज लगा के खड़ा हुआ था, कितने सारे इसके रैंक लगे हुए थे यहाँ पे, उसके ऊपर नजर पड़ी। वो फौरन उस तरफ चल के उस आदमी के पास गए। अब वो अरबी बोलता है, हजरत जी उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मालूम नहीं उससे जाके क्या बात थी। मैं वो लैंग्वेज समझ नहीं सका, मालूम नहीं क्या बोला उसको। ये मेरे को मालूम पड़ा कि उस आदमी ने जो कुछ बोला, किस जबान में बोला, कि 15 मिनट बाद तुम मुझे हजरे असवद पे मिलो। अल्लाह, अजान फज्र हो गई थी, हम लोग कोई 20 सफ़े बन गई थी। अब सफ़ों में आप फलांग कर हजरे असवद तक नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस हर जगह खड़ी हुई। अल्लाह क्या करेंगे, हजरत जी कहते हैं सुन्नतें पढ़ लो। तो कहीं पहुँचे हजरे असवद से 15-20 सफ़े दूर, और नमाज सुन्नत पढ़ी फजर की। सुन्नतें पढ़ के वो बोलते हैं 10-15 मिनट हो गए असर, मतलब हाँ हजरत जी टाइम हो गया, बोले चलें बिस्मिल्लाह। हम लोगों ने एक सफ पार की, दूसरी सफ पार की, तीसरी सफ, कोई शख्स हमें रोकने वाला नहीं था, कोई ने हमको रोका नहीं, कोई पुलिस वाले के सामने से निकल रहे हम, कोई ने हमें नहीं रोका। हजरत जी आगे, मैं पीछे, और मेरे पीछे ताहिर भाई। हम लोग गए, वो लोग हजरत असवद के पास जगह खाली करा देते इतनी सी, और सफ़े बन जाती हैं पूरे काबा शरीफ के पास। वहाँ पहुँचे हजरत असवद हमारे सामने, बिल्कुल ऐसे के देख लें आप जैसे ये मैं देख रहा हूँ, दरवाज़ा गोल्ड बना हुआ है यहाँ पे, हजरत असवद बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। वो जो शख्स था जिससे मुलाकात हुई थी, जिससे बात की थी, उन्होंने हजरत जी को कहा आए आप। वहाँ पे कोई एक अल्लाह का बंदा नहीं था सिवाय हजरत जी के। उन्होंने बोसा दिया हजरत असवद पे, वहाँ पे से बोसा आराम से दे के फिर मुझे बुलाया, मैंने जाके हजरत असवद पे बोसा दिया। एक कोई ने धक्का नहीं दिया, कोई कोई नहीं है वहाँ पे सिवाय मेरे। अब हजरत जी ने दे दिया बोसा, मैंने दे दिया, ताहिर भाई आए उन्होंने बोसा दिया, एक और पाकिस्तानी साथ के पीछे 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 आ रहे थे साथी, तो हम नहीं रह जाए, वो भी बेचारे लगे रहे, वो भी पहुँच गए, उनको भी बोसा देने की सादत हो गई, और अल्लाह ताला ने हम चारों को ये नवाजा वहाँ पे तोहफा। हमने बोसा दिया हजरत असद को आराम से, और फिर जाके और फजर नमाज की जमात की, और वहीं पे जमात हुई, और अल्लाह ताला ने पहली बार मेरे को पिछले 6-7 साल के बाद ये, और इस तरीके से कि कोई धक्का नहीं लगा, कोई को जैसे नीयत थी ऐसे करवाया अल्लाह ताला ने। तो मेरी ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको इसमें लगाए रखे, और इंशाल्लाह ताला ऐसे वाकयात और काफ़ी हैं। फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह कोई के साथ बैठेंगे तो शुरू हो जाएगी बात, तो करूँगा। अभी जो है रजा साहब आपको थोड़े बात जिक्र के बारे में, या हमारे श्रीलंका के अमीर हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी साल, हम तो अभी बच्चे हैं, क्योंकि हम जो है खेल कूद में गुजारा बचपन, बड़ा खेला, गिल्ली बल्ला खेला, बैट बॉल खेला, पतंगे उड़ाई, और जब जवानी आई तो वो सोके गुजार दी, और जब बुढ़ापा आया तो अब रोके गुजार रहे हैं हजरत जी के साथ, के काश वो मिल गए होते उस वक्त जवानी के वक्त, क्योंकि वही टाइम है लगाने का। तो जवान जितने भी यहाँ पे हैं, अल्लाह ताला आप लोग की मेहनत को लड़ाएगा, नहीं जाने देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज, और कुछ कहा सुना हो आप लोगों को, हजरत जी के पास आप लोग आते हैं मुसाफे के लिए, आपको रोका हो तो माजरत चाहता हूँ, और इसलिए करता हूँ मैं ये, इनके लिए थोड़ी सी राहत हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, तो मेरी तरफ से माजरत है आपका।